डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 17:16 ईसा 32 से 33 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 16 यशायाह अध्याय 32 और 33 है। मुझे लगता है कि अब शुरुआत करने का समय आ गया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरी दो बहनें थीं जो मुझसे बड़ी थीं, इसलिए मेरी एक माँ नहीं थी। मेरी तीन बहनें थीं और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी एक बहन आज रात यहाँ है। आश्चर्य, अपना हाथ पकड़ो। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान कि आपने हमें परिवारों में एक साथ रखने का फैसला किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पुरुष और महिला बनाया है ताकि हम खुद को दूसरे में पा सकें जो हमसे अलग है। धन्यवाद कि इसी संदर्भ में आपने यह आदेश दिया कि बच्चों को दुनिया में आना चाहिए। धन्यवाद भगवान। माता पिता और बच्चों, दादा दादी और पोते पोतियों को धन्यवाद। उन वास्तविकताओं के लिए धन्यवाद जिनसे हमें पता चलता है कि रिश्तों में हम कौन हैं। धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने स्वयं को हमारे सामने हमारे पिता के रूप में प्रकट किया है। हम में से कुछ के लिए वह पिता है जिसे हम कभी नहीं जानते थे। हम में से कुछ के लिए वह पिता जो उस पिता का आदर्श है जो हमारे पास नहीं था। लेकिन भगवान, आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आप हमारे पास तानाशाह या बॉस या पर्यवेक्षक के रूप में नहीं आते हैं, बल्कि आप हमारे पास हमारे पिता के रूप में आते हैं। और इसलिए आज शाम प्रभु, हम आपके पास आपके बच्चों के रूप में आते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे हमें सिखाने के लिए कहते हैं। हमें वह सत्य सिखाएं जिसे आपने अपने वचन में स्थापित किया है। हे भगवान, आपकी आत्मा की शक्ति से हमें कुछ आश्चर्य को समझने में मदद करें। हमें बदलो। आपने वादा किया था कि जब हम विश्वास के साथ आपके वचन पर आएंगे तो आपकी आत्मा इसे हमारे दिलों में प्रेरित करेगी, और यही हमारी प्रार्थना है। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। यदि यह हमारे साथ आपकी पहली रात होगी तो हम यशायाह की पुस्तक देख रहे हैं और हम धीरे धीरे इस पर काम कर रहे हैं। आज रात हम अध्याय 32 और 33 को देख रहे हैं। वे उस इकाई का हिस्सा हैं जिसे मैंने उन लोगों के लिए शोक कहा है जो इंतजार नहीं करेंगे, और वह अध्याय 28 से 33 है। धिक्कार है उन पर जो प्रतीक्षा नहीं करेंगे। और हमने पिछली बार बात की थी विशेष रूप से ईश्वर द्वारा अपने लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतीक्षा करने के बुलावे के बारे में। उनके शत्रुओं को पराजित करने की प्रतीक्षा करें, उसके द्वारा वह पूरा करने की प्रतीक्षा करें जो उन्हें पूरा करना था, और लोगों का ऐसा करने से इनकार। यह उस बड़े अनुभाग में है जिसे आपने याद किया है, जिसे हमने विश्वास में सबक का नाम दिया है। भरोसे में सबक। अध्याय 7 से अध्याय 39 तक पुस्तक का यह पूरा भाग ईश्वर पर भरोसा करने के बारे में है। हमने उसके बारे में दासत्व के आधार के रूप में बात की है। हमने सुझाव दिया कि अध्याय 6 में हमारे पास यह मॉडल है कि यदि अशुद्ध होठों वाला राष्ट्र ईश्वर से उसी तरह मिल सकता है जिस तरह अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति ईश्वर से मिल सकता है, तो राष्ट्र उसकी सेवा करने में सक्षम होगा। लेकिन मूलभूत आवश्यकता ईश्वर के उस प्रकार के दर्शन की है जो उन्हें विश्वास दिलाए कि ईश्वर इतना महान है, वह इतना शक्तिशाली है, वह इतना प्यारा है कि आप अपने जीवन के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। और इसलिए हम उन तरीकों पर गौर कर रहे हैं जिनसे वह पाठ हमें यहां सिखाया जाता है। अध्याय 28 से 33 में संभवतः यह सामग्री 710 से 705 ईसा पूर्व के आसपास की है। यशायाह ने वादा किया था, उसने भविष्यवाणी की थी कि जिस असीरिया पर उन्होंने परमेश्वर के स्थान पर भरोसा किया था वह एक दिन उन पर हमला कर देगा और ऐसा ही हुआ है। इसराइल का उत्तरी राज्य खत्म हो गया है। जो कुछ बचा है वह यहूदा का छोटा सा घिरा हुआ देश है। असीरियन सेना आपके दृष्टिकोण से नीचे पलिश्ती तट पर अभियान चला रही है। यहूदा का दक्षिण पूर्व पहले से ही मिस्र की ओर बढ़ रहा है। और सवाल यह है कि हम क्या करने जा रहे हैं? और जैसा कि हमने देखा है, जैसा कि हमने इन अध्यायों को देखा है, नेतृत्व इस निर्णय पर पहुंच रहा है कि हमें किस पर भरोसा करना है। मिस्र, यह सही है। हमारी एकमात्र आशा मिस्र के साथ गठबंधन बनाना है और वे हमें घोड़े दे सकते हैं, वे हमें रथ दे सकते हैं, वे हमें युद्ध के उपकरण दे सकते हैं और हम जीवित रहेंगे। और यशायाह का कहना है कि ये नेता 30 साल पहले सामरिया के नेताओं की तरह नशे में अंधे और बहरे हैं और वे आपको विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैंने देखा है कि मैं इन संकटों में एक प्रकार का ध्यान केंद्रित करता हूँ। आप सामरिया और यरूशलेम के नेताओं के काफी सामान्य विवरण के साथ शुरू करते हैं, लेकिन फिर आप अधिक से अधिक विशिष्ट हो जाते हैं, जब तक कि हमने पिछली बार अध्याय 31 श्लोक 1 में नहीं देखा था। यही है मूल बात। ठीक है, आज शाम को हमने देखा है कि कैसे प्रत्येक अध्याय की शुरुआत दुहक के साथ हुई है। अध्याय 32 किससे प्रारंभ नहीं होता? धिक्कार है। यहाँ यह है एक अध्याय जिसमें वह नहीं है। लेकिन मैं आपसे अध्याय 30 श्लोक 27 पर एक नजर डालने और उस श्लोक को शुरू करने वाले शब्द को देखने के लिए कहता हूँ। देखो देखो, अध्याय 32 इसी बात से शुरू होता है। जब आप छंदों की गिनती करते हैं तो अध्याय 30 में 33 छंद हैं, अध्याय 31 में 9 और अध्याय 32 में 20 हैं। तो वास्तव में उन दो अध्यायों 31 और 32 में इसकी लंबाई अध्याय 31 के समान है। इसलिए मुझे संदेह है कि वास्तव में अध्याय का विभाजन अनुचित है। हमें बस उस संदेश को जारी रखना चाहिए जो शोक से शुरू होता है और इसमें देखें अध्याय 30। और फिर उसी तरह धिक्कार है और अध्याय 31 और 32 में देखो। तो वास्तविक अर्थ में अध्याय 32 में यह संदेश उस बड़े विचार की निरंतरता है जो अध्याय 31 से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ अध्याय 32 में क्या वादा है? क्या यह सकारात्मक है या यह नकारात्मक है? यह सकारात्मक है ना? हाँ, यह सकारात्मक है। हमने देखा है, मैंने आपसे इस बदलते अनुपात को देखने के लिए कहा है। अध्याय 28 में बहुमत नकारात्मक है, छोटा अनुपात सकारात्मक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यह अनुपात लगातार बदलता रहता है और हम यहाँ 32 और 33 में कही गई सकारात्मक प्रकार की बातों के प्रभुत्व तक पहुँचते हैं। मैं आपसे श्लोक 1 से 8 तक को एक वाक्य में सारांशित करने के लिए कहता हूँ। क्या कोई ऐसा करता है? भगवान सर्वशक्तिमान, निर्माता, मुक्तिदाता, भगवान पर भरोसा रखें। ठीक है, अच्छा। यहाँ किस प्रकार के राज्य की बात की गई है? एक ऐसा राज्य जहाँ क्या होता है? राजा धर्म से शासन करेगा। इन शराबी अंधे नेताओं की तरह नहीं जो तुम्हें मिस्र ले जा रहे हैं। और श्लोक 3 और 4 में क्या परिणाम होगा? उनकी आंखें खुली रहेंगी, उनके कान खुले रहेंगे, उतावली करने वालों का हृदय समझेगा और जान लेगा, हकलाने वालों की जीभ स्पष्ट बोलने में उतावली करेगी। तो उस अंधेपन और बहरेपन के बजाय जिसे इन मानव नेताओं ने अब इस आने वाले राज्य में बढ़ावा दिया है, अंतर्दृष्टि होगी, ज्ञान होगा, समझ होगी। अब श्लोक 5 और 6 तथा 7 और 8 के बीच विरोधाभास है। विशेषकर 5, 6 और 7 में किसके बारे में बात की गई है? मूर्ख और बदमाश। लेकिन पद 8 इस राज्य की विशेषता क्या होगी? विश्वसनीयता, बड़पन। वहां के हिब्रू शब्द में खुलेपन का भाव है। एक महान व्यक्ति वह है जो खुला है। तो यहां अंतर है। ये मानव नेता जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं और राजा बनाम उनके शासन का उत्पाद हैं। वह राजा जो धर्म से राज्य करता है, जिसके हाकिम न्याय से राज्य करते हैं। तो यह दूसरे प्रकार के राज्य का वादा है ना? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मूर्ख पुराने नियम के सबसे सशक्त नकारात्मक शब्दों में से एक है। अब मूर्ख का उपयोग 2 या 3 अलग अलग हिब्रू शब्दों का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। यह सबसे बुरा नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार का माध्यम है। यह दूसरा स्तर है। यही वह व्यक्ति है जो बस ठोकर खाता है। वह हर चीज पर टूट पड़ता है। और ठोकर खाने वाले अब महान न कहलाएंगे। दुष्ट और बदमाश अब सम्माननीय नहीं कहे जाएंगे, ऐसा वाशिंगटन में कहें। वैसे भी यह प्रकाश का, शांति का, अंतर्दृष्टि का, बड़पन का राज्य होगा। व्यक्ति ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि वास्तव में भगवान के शासन की पारदर्शिता सब कुछ हल्का और उज्ज्वल बना देगी। हाँ, वे रूपांतरित हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, परिवर्तन इस साम्राज्य का एक हिस्सा है। आप सभी ने यह पंक्ति सुनी होगी, लेकिन मैं आपको इसकी याद दिलाता हूँ। सच बोलने की अच्छी बात यह है कि आपको यह याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने पिछली बार क्या कहा था। यहाँ फिर से यह पारदर्शिता है जो हमारे दिलों पर लिखी गई उनकी धार्मिकता से आती है, और फिर हम वही रह सकते हैं जो हम हैं और डर में नहीं जी सकते। तो यह वह राज्य है जो आने वाला है। अब श्लोक 1 से 8 और श्लोक 9 से 14 के बीच साहित्यिक संबंध क्या है? ठीक है, अतीत और भविष्य, यह एक समय का रिश्ता है। साहित्यिक संबंध के बारे में क्या अंतर? हाँ, विरोधाभास। और किसकी तुलना की जा रही है? अब मैं यहाँ आपको आगमनात्मक बाइबल अध्ययन पद्धति के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। जब आप इस तरह का अवलोकन करते हैं, तो आप प्रश्न पूछते हैं, 3 प्रश्न। तो हमने देखा है कि यहाँ एक विरोधाभास है, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि विरोधाभास क्या है। फिर हम पूछना चाहते हैं कि ये विरोधाभासी क्यों हैं? और अंततः इस विरोधाभास के निहितार्थ क्या हैं? तो सबसे पहले वह क्या है जो वास्तव में 2 श्लोकों में विरोधाभासी है? प्रथम श्लोक का विषय क्या है? नए साम्राज्य की विशेषता पारदर्शिता, कुलीनता और धार्मिकता है। उस दूसरे श्लोक, श्लोक 9 से 14 का विषय क्या है? यह निर्णय है। हाँ, शालीनता। इसलिए नए साम्राज्य की कुलीनता की तुलना शालीनता से की जाती है। अब यहाँ अगला प्रश्न आता है, उस विरोधाभास को यहाँ क्यों सामने रखा जा रहा है? ठीक है, यदि आप मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो आप फिर से पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे। ठीक है, आत्मसंतुष्टि का मतलब है कि मैं यह कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्लोक 1 से 8 में ऐसा क्या है जो आत्मसंतोष को प्रेरित कर सकता है? वादे। याद रखें, हमने इस बारे में पहले भी बात की है, हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। यह यशायाह की खासियत है। जब भी वह भविष्य के लिए अच्छे वादे करता है, तो वह क्या करेगा? वह हमें याद दिलाएगा कि इसे हल्के में न लें। वह अच्छा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बस अपना मैला कुचैला, खाली जीवन जी सकता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें बहुत सारा उत्तरी अमेरिकी ईसाई धर्म प्रचार है। मेरा मतलब है, हमने किताब का अंत पढ़ लिया है। हम जानते हैं कि किताब का अंत कैसे होता है। हम जीतेंगे। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ क्या? तो आने वाले राज्य के वादे और भगवान के अच्छे वादों पर आत्मसंतुष्ट होने की वर्तमान प्रवृत्ति के बीच विरोधाभास। मुझे अपने अस्तव्यस्त जीवन से निपटने के लिए ईश्वर को अनुमति नहीं देनी है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मुझे ईश्वर को मुझे दोषी ठहराने की अनुमति नहीं देनी है, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं मानता हूं कि यहां हम में से बहुत से लोग शाश्वत सुरक्षा के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो लंबे समय से ईसाई हैं, यह मान लेना बहुत आसान है कि सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे हमेशा होता है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अपने एक मित्र की याद है, हम सहस्राब्दी के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या आप सहस्राब्दी पूर्व या उत्तर सहस्राब्दीवादी या सहस्राब्दीवादी हैं? उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं एक तरह से पैन मिलेनियलिस्ट हूं। अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्हें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए? वह कौन सी कल्पना है जिसका वह विशेष रूप से श्लोक 10 में उपयोग करता है? क्या होने जा रहा है? चीजें बिखरने वाली हैं। फलप्रदता का अभाव। अंगूर की फसल खराब होने वाली है। यहां आप वर्ष के वसंत में हैं। आप लताओं को देख रहे हैं। हे भगवान, उन सभी बड़े अंगूरों को देखो। अद्भुत समूहों को देखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, सिवाय उस सूखे के जो आने वाला है। अब प्रश्न यह है कि क्या हमें श्लोक 10 को शाब्दिक मानना चाहिए या नहीं, और इसका उत्तर श्लोक 12 और 13 में मिलता है। हम किस प्रकार की अंगूर की फसल की बात कर रहे हैं? शाब्दिक या आलंकारिक? श्लोक 13 क्या कहता है? किसकी मिट्टी? मेरे लोगों का। हाँ हाँ, हम जमीन की मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनता की मिट्टी की, और वह मिट्टी कांटों और झाड़ियों में उग रही है। मनभावन खेत प्रजा के खेत हैं। और फिर हम स्वयं को, अपने जीवन को देख सकते हैं। हम चर्च को देख सकते हैं और कह सकते हैं, अंगूर की फसल के बारे में क्या? हाँ, मुझे लगता है कि यह रूपक है। यह आलंकारिक और शाब्दिक दोनों है। और इसलिए श्लोक 14 में क्या परिणाम होने वाला है? उजाड़ महल छोड़ दिया गया है। घनी आबादी वाला शहर वीरान है। पहाड़ी और गुम्मट सदैव के लिए गढ़ बन जाएंगे। जंगली गधों का आनंद, कानून की चरागाह। यशाया को श्लोक 13 में कांटों और झाड़ियों का वह युग्मन पसंद है। जब वह भूमि के उजाड़ होने की बात करता है, तो वह कांटों और झाड़ियों के उगने और देश पर कब्जा करने की बात करता है। दुनिया के उस हिस्से में यह निश्चित रूप से अक्षरशः सत्य है। इसमें कांटे बहुत अच्छे से उगते हैं, लेकिन आपको अन्य चीजें उगाने के लिए काम करना होगा। खैर, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन यह जीवन के लिए एक बहुत अच्छा रूपक है। आपको बस इतना करना है कि चीजों को जाने दें, और कांटे और झाड़ियां वही हैं। कोलरिज के बारे में बताई गई कहानी मुझे हमेशा पसंद आई है। उनसे एक मित्र मिलने आया था जो कम से कम अज्ञेयवादी था, और अज्ञेयवादी कह रहा था, ओह, आप जानते हैं, यह बहुत ही भयानक है कि हम अपने बच्चों को आस्तिक बनाने की कोशिश करते हैं। हमें बस उन्हें स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना चाहिए, और जो कुछ भी उनके जीवन में आएगा वह ठीक होगा। कोलरिज ने कहा, ओह सचमुच ठीक है, यह बहुत दिलचस्प है। साथी ने कहा, ओह मेरे जाने से पहले कोलरिज ने कहा, ठीक है, आप जानते हैं इस साल मैंने फैसला किया कि जो कुछ भी आएगा उसे होने दूंगा। बंदे ने कहा, अरे तुम्हें फूलों की खेती करनी होगी ना, आपको अच्छी चीजें सामने लाने के लिए संघर्ष करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बुरी चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। कांटे और झाड़ियां दुखदायी होती हैं। हाँ 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 हाँ, वे अपनी कीमत स्वयं तय करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वह विरोधाभास है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि निहितार्थ वही हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या हमें बड़प्पन, विश्वासयोग्यता, धार्मिकता और न्याय का विकास करना चाहिए या हम सिर्फ आत्मसंतुष्ट बने रहेंगे? अरे सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमने कांटे और झाड़ियां उगाना चुना है। तो वादा किए गए राज्य और वर्तमान संतुष्टि के बीच क्या अंतर है? वह विरोधाभास क्यों? क्योंकि वादों को हल्के में लेना और यह मान लेना बहुत आसान है कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। निहितार्थ क्या है? यह बहुत सरल है, लेकिन यह एक बहुत ही मानक प्रक्रिया है। आप कुछ देखते हैं, आप पूछते हैं क्या, क्यों क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंजरता, कांटों और झाड़ियों की यह स्थिति कब तक बनी रहेगी? पद 15, जब तक पवित्र आत्मा न उंडेला जाए। हाँ हाँ, और जब वह उंडेला जाएगा तो क्या होगा? श्लोक 15, मरुभूमि उपजाऊ मैदान बन जाती है और उपजाऊ खेत जंगल बन जाता है। तो फिर हम इस आलंकारिक शाब्दिक भाषा के साथ काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हाँ जब भूमि पर वफादार लोग फिर से आबाद होंगे तब वास्तव में उसकी उपज दी जाएगी। लेकिन हम उन लोगों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो कांटों और झाड़ियों में बड़े हुए हैं और अब वे एक फलदार खेत, वास्तव में एक जंगल बन गए हैं। मुझे यह अध्याय बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि यह ईसाई जीवन का एक दृष्टांत है। मुझे लगता है कि कुछ मायनों में श्लोक 1 से 8 तक के अध्याय रूपांतरण को संदर्भित करते हैं। हमारे जीवन में एक नया शासक आया है, कुछ अच्छे नतीजे आए हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि के जीवन में वापस लौटना कितना आसान है। खैर, मेरा फिर से जन्म हो गया है, अंत में अच्छी फसल होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वह जुनून जिसे हम एक समय जानते थे चला गया है। जब तक पवित्र आत्मा न आए, और फिर पवित्रीकरण में वह हमारे लिए वह करने आता है जो हम करने में असमर्थ हैं। और मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के परिणाम क्या होने वाले हैं। श्लोक 16 और 17 ठीक है, वास्तव में 16, 17, 18, जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा तो क्या होगा? धार्मिकता, न्याय, शांति और शांत विश्वास। अच्छा, एक मिनट रुकिए, यहां अन्य भाषाओं में बोलने के बारे में कुछ भी नहीं है, मृतकों को जीवित करने के बारे में कुछ भी नहीं है, लोगों को ठीक करने के बारे में कुछ भी नहीं है, राक्षसों से मुक्ति के बारे में कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा यही करता है ना? खैर, उस प्रश्न का उत्तर हाँ है, पवित्र आत्मा वे कार्य करता है। नया नियम पर्याप्त स्पष्ट है, लेकिन मैं आपसे इसके आधार पर पूछ रहा हूं कि पवित्र आत्मा का प्राथमिक कार्य क्या है? फल, फल, यह हम सभी ने सुना है, लेकिन मैं आपको इसकी याद दिलाना चाहता हूं। फल और उपहार के बीच अंतर। फल का तात्पर्य चरित्र से है, उपहारों का तात्पर्य उपयोगिता, उपयोगिता से है। बाकी सब चीजों से ऊपर पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर परमेश्वर के चरित्र को पुनः उत्पन्न करना है। अब मैं आपको यह सुझाव नहीं देना चाहता कि जो लोग उपहारों पर जोर देते हैं वे आस्तिक नहीं हैं, कि वे बाइबल के अनुसार नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं अपने कुछ करिश्माई पेंटेकोस्टल दोस्तों के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूं जिनमें भगवान कुछ उल्लेखनीय चीजें करते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम सोचते हैं कि यह पवित्र आत्मा का प्राथमिक कार्य है तो हम बात से चूक गए हैं। उस नोट पर मैं आपका ध्यान ईजेकील अध्याय 36 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमने इस अध्याय को पहले भी देखा है और हम शायद इसे फिर से देखेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि बंधुओं ने उन्हें असहाय दिखाकर उनके नाम को अपवित्र किया है। तो भगवान कहते हैं, मुझे आप में अपना नाम पवित्र करना होगा ताकि राष्ट्र जान सकें कि मैं पवित्र भगवान हूं। मैं यह कैसे करने जा रहा हूं? वह कहता है, ठीक है, नंबर एक, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे पाप के परिणामों से मुक्ति दिलाऊंगा। नंबर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्ति पूजा से शुद्ध करने जा रहा हूं। नंबर तीन, मैं तुम्हारे अंदर के उस पत्थर के दिल को तोड़ने जा रहा हूं और तुम्हें एक मांस का दिल दूंगा। नंबर चार, मैं अपनी आत्मा उंडेलने जा रहा हूं। श्लोक 27, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा और तुम्हें 30 फीट सीधे ऊपर कूदने और महिमा का जयकारा लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। आपकी बाइबल यही कहती है। यह वह नहीं है जो मेरा कहता है। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर समवाऊंगा और तुमको मेरी विधियों पर चलूंगा और मेरी आज्ञाओं के मानने में चौकसी करूंगा। यही तो वे नहीं कर सके। वे जानते थे कि परमेश्वर की आज्ञाएं अच्छी थीं। वे ऐसा नहीं कर सके। भगवान कहते हैं, मैं समझता हूं। और अब जब आप समझ गए हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। नहीं, मेरे अनुभव में मुझे इसमें एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है कि उपहार नकली हो सकते हैं और वास्तव में उनके उपयोगितावादी पहलू के कारण बुरे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जबकि फल भगवान के गुणों के कारण नहीं हो सकता। फल नकली नहीं हो सकते। हाँ हाँ, अच्छी बात। हाँ, मैं पूछना चाहता था, आपको क्या लगता है कि वह यहां महिलाओं का उपयोग क्यों करता है? क्या यह आलंकारिक, शाब्दिक या दोनों है? क्या आपको लगता है बारिश होगी? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे कहना होगा कि मुझे उत्तर नहीं पता। हालांकि मुझे लगता है कि यह एक कारण है और मैं इसे बहुत सावधानी से कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं अच्छे और बुरे के लिए आध्यात्मिक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं। हम पुरुष, हम बस एक तरह से ढुलमुल होकर चलते हैं। आगे क्या करना है? लेकिन महिलाएं, मेरा मानना है, और अगर मैं गलत हूं तो आप महिलाएं मुझे सुधार सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि महिलाएं आध्यात्मिक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं और इसलिए आध्यात्मिक रूप से पटरी से उतरने का खतरा अधिक होता है। मैं चाहता हूं कि आप भी जानें, यह एलेन का प्रश्न था। हमारे पास एक बहुत ही आरामदायक डॉग हाउस है। मैं अभी इससे बाहर निकला हूं। आप इसमें हैं। क्या ये आपके दोनों प्रश्न थे? मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन यह एक अच्छा सवाल है। याद रखें कि अध्याय 3 में ये यरूशलेम की बेटियां हैं जो सभी साज सज्जा से सजी हुई हैं, और वह कहता है कि वह दिन आ रहा है जब आपसे वह सब छीन लिया जाएगा। इसलिए हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओह, या जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। महल को छोड़ दिया गया है और घनी आबादी वाला शहर वीरान हो गया है। हाँ, यही तो है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा को उंडेले जाने की आक्रामक खोज के बजाय एक प्रकार की निष्क्रिय प्रकृति है। यह बस एक तरह का है, ठीक है, हमें सफाई करने की जरूरत है, लेकिन यह मुझे लगता है कि आप सही हैं। आप जानते हैं, हम एक अध्याय पर संपूर्ण सिद्धांत नहीं बना सकते, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बात सही है। खैर, भगवान ने मुझ में अपना काम किया है, इसलिए मैं बस आराम से बैठ सकता हूँ और बस आने तक इंतजार कर सकता हूँ और स्वर्ग जा सकता हूँ। और मुझे लगता है कि यह कह रहा है, आप ऐसा करते हैं, आपके पास कुछ कांटे और झाड़ियाँ उगने वाली हैं, और फिर यह पुरानी खबर है, लेकिन किसी ने यह कहा है और मुझे लगता है कि यह सही है। ईसाई जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं। आप या तो आगे जा रहे हैं या पीछे। ऐसा कोई स्थिर ईसाई जीवन नहीं है जहां कुछ भी नहीं हो रहा हो, आगे या पीछे। और मुझे लगता है कि वह यहां इसी से निपट रहा है। वे आत्मसंतुष्ट हैं क्योंकि अच्छी खबर का वादा किया गया है, और वास्तव में वे पीछे की ओर खिसक रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छी बात। या तो परिपक्व हो रहे हैं या अपरिपक्व बने हुए हैं, मैं कहूंगा कि आप और अधिक अपरिपक्व होते जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, यह नौवीं कक्षा और दसवीं कक्षा के बीच के ब्रेक में होने जैसा है। आप जानते हैं, गर्मी वह सब कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, आपको पहला महीना पिछले साल से उठाते हुए बिताना होगा। क्या यहाँ पवित्र आत्मा का उंडेला जाना एक नए रिश्ते का मतलब नहीं है? ओह, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। हाँ 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 हाँ, यह है। और आप में से कुछ ने पवित्र होने के लिए मेरा आह्वान पढ़ा है, और आप जानते हैं कि मैं इस पर एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ कि पुराने नियम वाचा तीन कारणों से दी गई थी। एक, हमें यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर का चरित्र क्या है। दो, हमें वह चरित्र दिखाना जो वह हम इंसानों के लिए चाहता है। और तीन, हमें यह दिखाने के लिए कि हम यह नहीं कर सकते। तो पुराना नियम यह है कि लोग अपना सिर खुजलाते हैं और कहते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता। समझौता अच्छा है, यहां कुछ भी विचित्र या अजीब या विनाशकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इसे बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण है। भगवान, हम क्या करने जा रहे हैं? और भगवान कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुमने पूछा। मैं आपको वह जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए सभी प्राणियों पर अपनी आत्मा भेजने की योजना बना रहा हूँ। एफबी मेयर अपने दैनिक उपदेशों में जो कहते हैं, वह मुझे वास्तव में पसंद है। उनका कहना है कि भावना पूरी होनी ही थी, क्षमा करें, अनुबंध पूरा होना ही था, पहले मसीह में हमारे लिए और फिर पवित्र आत्मा द्वारा हमारे माध्यम से। मुझे वह पसंद है, मुझे वह पसंद है। जब तक मसीह आकर मंदिर को शुद्ध न कर दे, इसे भूल जाओ। पवित्र आत्मा गंदे मंदिर में नहीं आ सकता। दूसरी ओर, मंदिर की सफाई भगवान की आत्मा में प्रवेश की तैयारी है। तो एक महान अध्याय। हाँ, आप इसे केवल दोष के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आप जानते हैं, तथ्य यह है कि इसे वहां से आगे नहीं किया जा सकता है। अपराध बोध से ठीक है, यहां आपका तात्पर्य इस स्तर के अपराध बोध से है, सही? मेरा मतलब है, क्या हम अभी भी उन आज्ञाओं के लिए दोषी हैं जिन्हें आप जानते हैं कि हम नहीं कर सकते? जरूर जरूर, जहां तक भगवान का सवाल है, वे पूरे होने वाले हैं। और अगर मैं कहूं ठीक है, तो मैं यह नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं यह बहुत बुरा है। यह काफी हद तक समाज में कानूनों की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यह कर सकता हूं या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पता है कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं उत्तरदायी हूं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए 33 पर चलते हैं। अब यहां हमारा आखिरी दुहक आता है। जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि में टिप्पणी की है, इस बारे में कुछ प्रश्न है कि यहां विध्वंसक या विश्वासघाती कौन है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह असीरिया है। तुम्हें पता है, भगवान कह रहे हैं लोग तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं क्योंकि अश्शूर तुम्हें धमकी दे रहा है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अश्शूर न्याय के अधीन है। यह निश्चित रूप से संभव है। मैं यह सोचने में थोड़ा अधिक इच्छुक हूं कि यह मिस्र का संदर्भ है, क्योंकि मिस्र ने सचमुच यहूदा को धोखा दिया। उन्होंने सेना के साथ थोड़ी चालाकी की और जैसे ही अश्शूरियों ने उन पर तिरछी दृष्टि डाली, वे भाग गए। तो मैं सोचता हूं यह कहना है, धिक्कार है उस पर जिस पर आपके सलाहकारों और नेताओं ने आपको भरोसा करना सिखाया है। भगवान उनसे मिलेंगे और उनसे निपटेंगे। तो फिर श्लोक 2, 3 और 4। पिछले सप्ताह अध्याय 30 में हमने जो देखा उससे यह क्या भिन्न है? भगवान उद्धार करेंगे। पिछले सप्ताह अध्याय 30 में लोगों ने क्या कहा, आपको याद है? हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं वापसी और आराम में तुम्हारा उद्धार होगा। और उन्होंने क्या कहा, इनसे शुरू होने वाला एक अक्षरीय दो अक्षर वाला शब्द नहीं, इसे वापस देखो। अध्याय 30 श्लोक 15। इसराइल का पवित्र परमेश्वर यहोवा यों कहता है, लौटकर और विश्राम करके तुम उद्धार पाओगे। शांति और विश्वास ही आपकी ताकत होगी। परंतु तुम अनिच्छुक थे और तुमने कहा, नहीं, हम घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भाग जाओगे। हम स्विस घोड़ों पर सवार होंगे। हम एक की धमकी से भाग जाएंगे। पांच की धमकी पर तुम तब तक भागोगे जब तक कि तुम पहाड़ की चोटी पर झंडे की तरह, पहाड़ी पर एक संकेत की तरह नहीं रह जाओगे। इसलिए प्रभु दयालु होने की प्रतीक्षा करते हैं। यहां श्लोक 2 में लोगों ने क्या कहा, हम प्रतीक्षा करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आप दयालु हैं। प्रभु दयालु होने की प्रतीक्षा करते हैं। कम से कम यशायाह के मुंह से उन्होंने सबक सीख लिया है। हे प्रभु, तेरी कृपा कितनी दयालु है। जैकब ने पेनियल से यही सबक सीखा था। ये सभी अन्य आशीर्वाद तब तक बेकार हैं जब तक आपके आशीर्वाद की कृपा मुझ पर न हो। हे प्रभु, हम पर कृपा करें। हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। हर सुबह हमारा हाथ बने, तनाव के समय में हमारा उद्धार करें। ओह, हम अमेरिकियों को कार्य सूची की चुनौती के लिए हर सुबह उस कविता की कितनी आवश्यकता होती है। और जहां तक मेरा सवाल है, यह सुबह की भक्ति के महान मूल्यों में से एक है। आप प्रभु की बाट जोह रहे हैं। आप उसे अपने दिन को प्राथमिकता देने की अनुमति दे रहे हैं। उसे आपके समय को व्यवस्थित करने की अनुमति देना। ओह, मेरे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मुझे 8 बजे ओसवाल्ड के साथ एक क्लास मिली है। वह परीक्षा दे रहा है। तो फिर श्लोक 3, लोग कब भागते हैं? जब वह खुद को ऊपर उठा लेता है। या यह कहता है, जब आप अपने आप को ऊपर उठाते हैं। अब श्लोक 5 को देखें। वहां आरंभिक वाक्यांश क्या है? प्रभु महान है। हाँ हाँ, श्लोक 10 को नीचे देखें। अब मैं उठूंगा, प्रभु कहते हैं। अब मैं खुद को ऊपर उठाऊंगा, अब मैं ऊंचा हो जाऊंगा। पहले जो कुछ हुआ उसका एक सारांश विवरण जैसा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान की स्तुति करना जीवन की उन समस्याओं का उत्तर कैसे है जिनका हम सभी सामना करते हैं? ठीक है, उसके पास उत्तर हैं। उसकी प्रशंसा करके हम स्वयं को उसकी याद दिलाते हैं। यह उस पर हमारा भरोसा दर्शाता है। हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम यह नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मैं अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा हूँ। यदि हम उसकी इच्छा की तलाश करें तो शायद हम उसे पा लेंगे। और क्या? हमें याद है कि वह अभी भी प्रभारी हैं। हाँ हाँ, यह भगवान को प्रसन्न करता है। हाँ हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि वह संप्रभु है। विनम्रता, यह चीजों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में रखता है। उसने हमें उसकी आवश्यकता के लिए बनाया है। और यदि तुम यहोवा की स्तुति करते हो तो किसकी स्तुति नहीं करते? अपने आप को। हाँ, यह वह विषय है जिसे हम उन विषयों में से एक है जिन्हें हमने पुस्तक में देखा है। विकल्प क्या है? क्या हम मानवीय क्षमता, मानवीय ज्ञान और मानवीय सुंदरता की प्रशंसा करेंगे? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमने स्वयं को अपमानित किया है, क्योंकि कब्र उन सब पर हंसती है। परंतु यदि हम प्रभु की बड़ाई करें तो वह कहता है, हे बालक, तू वहां धूल में क्या कर रहा है? यहां आओ और मेरे साथ सिंहासन पर बैठो। तो यह अंतिम अध्याय भगवान के उत्कर्ष के बारे में है। और यदि हम श्लोक 22 को देखें तो वहां ईश्वर के लिए 3 संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। क्या रहे हैं? न्यायाधीश, कानून देने वाला और राजा। अब हमने एक अच्छे सौदे का निर्णय करने के बारे में बात की है। मुझे देखने दो कि क्या मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है। क्या यह मुख्य रूप से एक कानूनी अधिकारी है? अच्छा अच्छा अच्छा, उन लोगों के नाम मेने के जीवन की पुस्तक में लिखो। ठीक है। यह क्या है? शिक्षक, व्यवस्था बहाल करने वाला। व्यवस्था बहाल करने वाला, ठीक है। कक्षा के मुखिया के पास जाएं। यह वह है जो दुनिया को, ब्रह्मांड को उस क्रम में लाता है जिसके लिए उसने इसे डिजाइन किया था। इसमें कानूनी समानता शामिल है। इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। उन्होंने इसे अपने ब्रह्मांड के लिए डिजाइन किया था, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। जज आ रहे हैं। भगवान का शुक्र है। कानून देने वाला, उस शीर्षक के निहितार्थ क्या हैं? अनुदेश, अनुदेश, बहुत अच्छा। उसे ऐसा करने का अधिकार क्यों है? निर्माता, निर्माता, उसे यह कहने का अधिकार है कि आपसे इसी तरह काम करवाया गया है, इस तरह से काम करो और यह काम करेगा, किसी अन्य तरीके से काम करें और यह काम नहीं करेगा। यह आश्चर्यजनक है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हाँ हाँ, तोरा, निर्देश पुस्तिका, हमें बताती है कि आदेश क्या होना चाहिए और यदि हम इसका पालन करेंगे तो हम इसका अनुभव करेंगे। और फिर वह राजा है। वह है जो सब कुछ एक साथ रखता है और इसे उचित संबंध में रखता है। उन लोगों के विपरीत जो मेजों को उल्टी से भर रहे थे। अध्याय 28 में हमारे पास यह है। ठीक है। चलो अब वापस चलते हैं। छंद 7, 8 और 9 को देखें। इस अध्याय में मुख्य विषय सकारात्मक है। उन छंदों के बारे में क्या? वे नकारात्मक हैं। श्लोक 5 और 6 और फिर श्लोक 10, 11 और उसके बाद के विपरीत। यहाँ विरोधाभास क्यों है? दोहराव सबसे अच्छा शिक्षक है। हाँ, दोनों तरफ के छंद भगवान की महिमा की ओर इशारा करते हैं। ये आयतें किस ओर इशारा करती हैं? उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने बात नहीं मानी। क्या होता है जब भगवान महान नहीं होते? उनके नायक सड़क पर रोते हैं। शांतिदूत फूट फूट कर रोते हैं। राजमार्ग बेकार पड़े हैं। यात्री रुक जाता है। अनुबंध टूट गए हैं। शहरों का तिरस्कार किया जाता है। आदमी के लिए कोई सम्मान नहीं है। क्या यह दिलचस्प नहीं है? आदमी को ऊंचा करो और आदमी के लिए कोई सम्मान नहीं है। प्रभु की स्तुति करो और वह है। हाँ, मुझे लगता है कि यह मिस्र है। मुझे लगता है कि हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। विश्वासघाती भूमि शोक मनाती है और उदास हो जाती है। लेबनान विशाल वन क्षेत्र नष्ट हो गया है। माउंट कार्मेल के ठीक नीचे शेरोन समृद्ध तटीय मैदान है, जहां रेगिस्तान की तरह अच्छी बारिश होती है। बाशान जो उत्तर में जॉर्डन घाटी के जेरिको के दूसरी ओर गोलान की ऊंचाई है, फिर से बहुत हरा भरा। कार्मेल तो यह वहां है। अपनी पसंद लो। और हम अगले सप्ताह इसमें और भी बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। ठीक है। इसलिए क्या प्रभु का आविर्भाव आवश्यक रूप से सार्वभौमिक शुभ समाचार है? यह सही है। यह सही है। श्लोक 11, तू भूसा का गर्भ धारण करता है। आप ठूंठ को जन्म देते हैं। आपका रुआच, याद रखें, एक शब्द है जिसका अर्थ है हवा, सांस, आत्मा और आत्मा। उनमें से प्रत्येक के लिए एक ही हिब्रू शब्द, शब्द रुआच है। यह फिर से वही स्थिति है जहां आपको अंतिम व्यंजन पर अपना गला साफ करना होता है। रुआच, तो आपकी आत्मा एक आग है जो आपको भस्म कर देगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता देखने के लिए हमें अपने समाज में बहुत दूर तक देखने की जरूरत है। सहायता रहित मानवीय भावना, तो प्रसिद्ध श्लोक श्लोक 14, हम में से कौन भस्म करने वाली आग में रह सकता है? हम में से कौन अनंत जल में रह सकता है? यह हमेशा मेरी पसंदीदा तस्वीरों में से एक रही है। भगवान ब्लास्ट फर्नेस, अपने दरवाजे खोलना और घास की गठरी को अंदर आने के लिए आमंत्रित करना, यही तो है। यह वही है। और इसलिए आखिरी दिन जब अपरिवर्तित लोग स्वर्ग में होते हैं और भगवान कहते हैं, यदि आप चाहें तो सीधे मेरे जीवन में आ सकते हैं, और वे कहते हैं, क्या तुम पागल हो? क्या हम इस तरह आग में नहीं रह सकते? आइए हम स्वर्ग नामक इस भयानक जगह से बाहर निकलें। आपके पास एक मतलबी भगवान की यह तस्वीर है, और कोई कहता है, ओह, अब मैं इसे देखता हूं। अब मैं इसे देखता हूं। स्वर्ग सचमुच बहुत प्यारा है, और मुझे उन सभी चीजों के लिए खेद है जो मैंने वहां की थीं, और मैं स्वर्ग में रहना चाहूंगा। और भगवान कहते हैं, नहीं, तुम्हारे पास एक मौका था, तुम नरक में जाओ। हमारे पास भगवान की ऐसी ही तस्वीर है। यह तो बदनामी है। भगवान लोगों को नरक में नहीं भेजते, वह उन्हें उनकी पसंद का अधिकार देता है। हम में से कौन अनंत जल में निवास कर सकता है? केवल केवल तभी जब आप खून से लथपथ हों। लेकिन अब देखिए, श्लोक 15 को देखो, श्लोक 15 को देखो, उत्तर क्या है? शाश्वत दाह में कौन निवास कर सकता है? वहां क्या उत्तर दिया गया है? वह जो धर्म से चलता है, सीधा बोलता है, जुल्म के लाभ से घृणा करता है, हाथ हिलाता है कि कोई दुल्हन को पकड़ न ले, खून खराबा सुनने से अपने कान बंद कर लेता है, बुराई देखने से अपनी आंखें बंद कर लेता है, यह कर्मों से मुक्ति है ना? क्या यह ऐसा नहीं कहता? यदि आप धार्मिक जीवन जीते हैं तो आप शाश्वत जलन के साथ जी सकते हैं। बहुत से अच्छे मेथोडिस्ट ऐसा मानते हैं, परंतु यह आत्मा ही है जो धार्मिकता लाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल यही है। सच तो यह है कि मेरी धार्मिकता खूनी चिथड़े के समान है, क्योंकि वह मेरी है। इसलिए अगर मैं अपनी ताकत से कहूं कि मैं उन सबसे धर्मी लोगों में से एक हूं जिन्हें मैं जानता हूं, मैंने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया है, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली है, खासकर उन छात्रों से जिन्होंने इजीता है, तो मैं ऐसा करूंगा। रक्तपात और इसमें शामिल सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं टीवी नहीं देखता। भगवान कहते हैं, यह अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। आशा करते हैं कि आपको आनंद आया। तो धार्मिकता और धार्मिकता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पॉल ने इसे फिलिपियंस में प्राप्त किया है और मेरा यहां धर्मोपदेश लगभग समाप्त हो चुका है। फिलिपियों में पॉल को यह मिलता है। वह कहता है कि मैं वह धार्मिकता नहीं चाहता जो मैंने उत्पन्न की है, मैं वह धार्मिकता चाहता हूं जो विश्वास उत्पन्न करता है। अब अशिक्षित पर्यवेक्षक उन दोनों को देख सकता है और कह सकता है उनके बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में स्वर्ग और नरक का सारा अंतर है। मैं यह धार्मिक जीवन क्यों जी रहा हूं? क्योंकि मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं जो मेरे लिए मरा और अपनी आत्मा के द्वारा मुझ में निवास करने आया है। मैं आप लोगों को यह साबित करने जा रहा हूं कि मैं इस धरती पर अब तक हुए सबसे अच्छे लोगों में से एक हूं। स्वर्ग और नरक में अंतर, यह अमीर युवा शासक की समस्या है, वह फरीसियों की समस्या थी। फरीसी धर्मी लोग थे, वे वास्तव में थे, किसी की किताब में। फिर से आप फिलिप्पियों में पॉल की अपनी उपलब्धियों की सूची सुने। वह एक अच्छा आदमी था, स्वयं उसके लिए। और वह कहते हैं, जिस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि गोबर के ढेर में इतना सारा गोबर था, वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। ओह, तो पॉल, अब जब से यीशु आए हैं आप नरक की तरह जी सकते हैं। पॉल कहते हैं, आपको ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार कहां से मिला? नहीं नहीं नहीं, अब मैं उसके लिए धर्मी जीवन जी सकता हूं। ठीक है, अगले सप्ताह हम इस अनुभाग को समाप्त करेंगे। भरोसे का पाठ, हम अध्याय 34 और 35 के साथ समाप्त करते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप आए। आपका धन्यवाद कि आप हमारे लिए अपना जीवन देने आए हैं। धन्यवाद कि आप फिर से जी उठे हैं ताकि हम फिर से जी सकें। आपका धन्यवाद क्योंकि आपने अपना मंदिर साफ कर लिया है, पवित्र आत्मा घर आ सकता है। हे प्रभु यीशु, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, हमारे माध्यम से अपना जीवन जियो। हमें धर्मी जन बनाओ, उतना ही धर्मी जितना कि कोई भी जीवित रहा है। लेकिन आइए हम इसे प्यार की खातिर करें, आइए हम इसे कृतज्ञता की भावना से करें, आइए हम इसे आपकी आत्मा के एक गीत के रूप में हमारे जीवन में गूंजें। धन्यवाद आपके नाम पर। तथास्तु। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 16 यशायाह अध्याय 32 और 33 है।